किसी नंबर 37 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफ़ीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शम्स गज़ाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ़ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफ़ीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। जलालुद्दीन खिलजी सलाती ने हिंद में पहला हुक्मरान था जिसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नियाज हासिल करने की कोशिश की थी। इसी वाक़े की तफसील ये है कि एक दिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के चंद बाहोश मुसाहिबों ने अपने फरमानरवा से कहा, आप दीगर अहले फ़न और उलमा पर अपने लताफ़ व करम की बारिश करते रहते हैं, मगर फिर भी कुछ मुस्तहिक लोग आपकी नज़र इल्तफात से महरूम हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने ताज्जुब से पूछा। शेख निज़ामुद्दीन और उनके कुछ साथी गयासपुर में नहायत गुरबत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुसाहिबीन ने अर्ज़ किया, अगर आप इन दरवेशों की किफ़ालत करें तो ये बात हुकूमत हिंद के लिए इंतहाई सआदत का बाइस होगी। शेख निज़ामुद्दीन एक बाकमाल बुजुर्ग हैं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खुद भी इल्म दोस्त हुक्मरान था, इसलिए वो अपने मुसाहिबीन के खास के मशवरे पर फौरन अमल पैरा हुआ। कातिब सुल्तानी ने फरमारवाए हिंद के हुक्म के मुताबिक मंदरजा ज़ैल इबारत तहरीर की, अगर आप पसंद करें तो मैं आपके लिए और आपके साथी दरवेशों के लिए कुछ गांव जागीर वक्फ कर दूं। सुल्तान जलालुद्दीन के मकतूब को हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बगौर पढ़ा। शाही कासिद का ख्याल था कि गयासपुर के गोशे में फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने वाला ये दरवेश अतिया सुल्तानी को फौरन कबूल कर लेगा, मगर शाही कासिद उस वक्त हैरान रह गया जब हजरत महबूब इलाही ने मकतूब सुल्तानी वापस करते हुए फरमाया, सुल्तान को इस फ़कीर की जानिब से सलाम पेश करना और कह देना कि अल्लाह इन्हें जजाय खैर दे। मेरे लिए यही पुरसिश काफ़ी है कि एक हुक्मरान को उन लोगों का ख्याल तो आया जो 10-12 सुल्तानी से बहुत दूर एक गोशे में अपनी जीस्त बसर कर रहे हैं। शाह कासिद कुछ देर तक हैरत सकूत के आलम में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के चेहरे मुबारक की तरफ देखता रहा। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ज़रूरतमंद शख्स की बेनियाजी का ये अंदाज देखा था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ज़रूरतमंद शख्स की बेनियाजी का ये अंदाज देखा था। ये हज़रत महबूब इलाही की तवाज़ो थी कि आपने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के मोहब्बत नामे का जवाब दुआओं से दिया, और यह आपकी गैरत थी कि ऐसी बड़ी जागीर को अदाए बेनियाजी के साथ ठुकरा दिया। फिर जब सुल्तान का कासिद वापस जाने लगा तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इसे मुखातिब करते हुए फरमाया, ये तो मेरा फैसला था कि मैं शाही अतियात को पसंद नहीं करता, मगर मुमकिन है कि मेरे दिगर साथी ज़रूरतमंद हों। तुम्हारे सुल्तान ने अपने मकतूब में एक मेरा ही नहीं दूसरे दरवेशों का भी जिक्र किया है, इसलिए मुझे लाजिम है मैं इनकी राय भी मालूम कर लूँ। इसके बाद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का वो ख़त अपने मुरीदों और दूसरे खिदमतगारों के पास भेज दिया। सैरुल औलिया में सैयद अमीर खुर्द की रिवायत है कि जब दूसरे मुरीदों और खिदमतगारों ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का ख़त देखा तो वो लोग जो भूख के अजाब से गुजर रहे थे हजरत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, शेख अगर ये जागीर मिल जाए तो हमारे दिन फिर जाएं। आपके सब्र व इस्तकामत का ये आलम है कि पानी तक नहीं पीते, मगर हम लोग इतनी कुव्वतें बर्दाश्त कहाँ से लाएँ? हमारी हालत बहुत शिकस्ता है, फाके करते करते थक चुके हैं। खुदा के लिए इस अतिया सुल्तानी को कबूल फरमा लीजिए। हजरत महबूब इलाही ने अपने खिदमतगारों की दरख्वास्त को सुना जो बहुत आजजाना थी। आप कह सकते थे कि जो लोग सलूक के रास्ते में सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो खानखा से चले जाएं, मगर आपने रस्म दिलदारी अदा फरमाई और इन लोगों के जवाब से खफा नहीं हुए जो कम हिम्मती का मुजाहरा कर रहे थे। फिर आपने अपने पीर भाई सैयद मोहम्मद किरमानी और चंद दूसरे लोगों को तलब करके फरमाया, इस मुल्क का हुक्मरान दरवेशों के लिए एक जागीर वक्फ करना चाहता है, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? सैयद मोहम्मद किरमानी और दूसरे दोस्तों ने अर्ज़ किया, मौलाना निज़ामुद्दीन, हम तुम्हारे यहाँ वक्तन फवक्तन खाना खा लेते हैं, अगर ये जागीर मुकर्रर हो गई तो फिर हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पियेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दोस्तों के जवाब से बहुत खुश हुए, फरमाया, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता, मेरा मकसूद सिर्फ तुम्हारी सोहबत है, मैं तुम्हारे जवाब से मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम दीन के कामों में मेरी मदद करते हो, दोस्तों को ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद हजरत महबूब इलाही ने अपने मुरीदान खास हजरत बुरहानुद्दीन गरीब और हजरत शेख कमालुद्दीन याकूब को तलब करके सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का ख़त इनके सामने रख दिया। दोनों मुरीदों ने मकतूब सुल्तानी पढ़ा और बसद एहतराम अर्ज़ किया, शेख आली मकाम ने क्या पसंद किया? कोई तलब नहीं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तो फिर ये खादिम भी अपने सीने में किसी जागीर की तलब नहीं रखते। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब और हजरत शेख कमालुद्दीन याकूब ने बैग जबान अर्ज किया, हमें तो सिर्फ अपने शाह की गुलामी मंजूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदान खास का जवाब सुनकर नहायत पुरसोज लहजे में फरमाया, अल्लाह तुम्हें इस हुस्ने नियत का सिला दे और खारदार हयात में मजीद इस्तेकामत बख्शे। इसके बाद हजरत महबूब इलाही ने शाही कसद को तलब किया, शाही कासिद को तलब किया और खत वापस करते हुए फरमाया, मैंने अपने एक एक साथी से पूछा मगर किसी को भी इस जागीर की हाजत नहीं, मुझे अपने गमगुजारों से यही उम्मीद थी। अब तुम सुल्तान से ये कह देना कि गयासपुर में रहने वालों को उनका अल्लाह काफी है। शाही कासिद नाकाम और नामुराद वापस चला गया। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इन खिदमतगारों को जो फाका कशी से तंग आकर जागीर सुल्तानी कबूल करने के ख्वाहां थे तलब करके फरमाया, तुम लोग सब्र करो, अनकरीब तुम्हारे लिए रिज़्क कसीर के दरवाजे खुलने वाले हैं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हजरत महबूब इलाही का उर्फ इनकार सुना और हुकूमत के हंगामों में गुम हो गया। दरअसल सुल्तान की पेशकश में खुलूस नहीं था, अगर इसके दिल में दरवेशों के लिए तड़प होती तो वह बार बार दरख्वास्त करता, बल्कि जागीर के कागजात लेकर खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर होता। वो तो इनायत शाही का एक अंदाज था, एक रस्मी कार्रवाई थी, फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसा मर्द कलंदर उसे कैसे कबूल करता। आप तो खुद रस्म शिकन थे, फिर जमाने की ये हकीर रस्में आपकी बारगाह जलाल में कैसे दाखिल हो सकती थी। जब भी कोई अमीर शर्फ बाजियाबी चाहता तो हजरत महबूब इलाही नागवार लहजे में फरमाते, इन उमरा को क्या हो गया है, दरवेश का वक्त बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों आना चाहते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का अतिया शुक्रिया के साथ लौटा दिया गया था और अब फिर गयासपुर के दरवेश की खानकाह में चार वक्त का फाका था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ममनुआ आयाम के अलावा हमेशा रोजे से रहा करते थे, अगर गजा मैसर आ जाती तो जौ की एक रोटी से इफ्तार फरमाते और दूसरी रोटी से सहरी का इतमाम करते। कुल दो रोटियां आपकी खुराक थी। अक्सर रिवायतों में दर्ज है कि हजरत महबूब इलाही ने बरसों नमक के पानी से जौ की रोटी इस्तेमाल की, यानी लज्जत कामो दहन से आप इतने ही दूर थे जितने ये जमीन आसमान से है। गयासपुर में एक बूढ़ी औरत भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की हमसाया थी और आपसे बेहद अकीदत रखती थी। इस बूढ़ी औरत का ये काम था कि सुबह से शाम तक रस्सी बटती और फिर दूसरे दिन करीब की आबादी में जाकर इस रस्सी को फरोख कर दे दी, फिर चार पैसे जो हासिल होते उनसे जौ का आटा और थोड़ी सी तरकारी खरीद लाती, उसके बाद चंद रोटियां पकाकर हजरत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर दी थी। पहली बार जब इन ज़ईफ़ खातून ने इस तरह अपनी अकीदत का मुजाहरा किया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह कहकर वो रोटियां कबूल करने से इनकार कर दिया, इस गिज़ा से तो खुद तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता, फिर हम लोग तुम्हारी नातवा कंधों पर अपने रिस्क का बोझ क्यों डालें, हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हमारा रज़ाक भी है और दूसरी ज़रूरियात का कफ़ील भी। हजरत महबूब इलाही का जवाब सुनकर बूढ़ी औरत गिरिया उजारी करने लगी, मुझे अपनी खिदमत से महरूम ना फरमाइए, मेरे नामा अमाल में इसके सिवा कुछ नहीं। ज़ईफ़ खातून के लहजे में इस कदर खुलूस और गुदास था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया इनकार ना कर सके और जौ की पकी हुई रोटियां कबूल फरमा ली। अब ये इत्तेफाक था या कुदरत की कोई मसलहत कि वो खातून कई दिन से रस्सियाँ तैयार कर रही थी मगर कोई खरीदार नहीं मिलता था। हजरत महबूब इलाही और दूसरे दरवेशों की तरह वो खातून खुद भी चार दिन से भूखी थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया से अकीदत का ये हाल था कि वो अपनी तकलीफ को भूल नहीं थी और हम वक्त इस फिक्र में गर्क रहती थी कि रज़ाक दो आलम किसी तरह चंद रोटियों का इंतजाम कर दे और ये मर्दान खुदा इन रोटियों से रोज़ा कुशाई कर लें। बिलाखिर पांचवें दिन किसी शख्स ने इन खातून से एक रस्सी खरीद ली। खातून बहुत खुश थी कि आज फाका कशी का ये तसलसल टूट जाएगा। रस्सी फरोख करने से जो रकम हासिल हुई थी वो महज इतनी थी कि उससे एक सेर जौ का आटा खरीदा जा सकता था। खातून ने यही किया और जब असर का वक्त आया तो उन्होंने वही सेर भर आटा हजरत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मौलाना कमालुद्दीन याकूब को हुक्म देते हुए फरमाया, ये नजर खुलूस है, इसे कबूल कर लो और आटे को देग में डालकर पकने के लिए रख दो। हजरत शेख कमालुद्दीन याकूब ने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर अमल करते हुए जौ के आटे को देग में डाल दिया और फिर ज्यादा मकदार में पानी भर दिया, उसके बाद आग दहका दी गई। ऐसा करने से हजरत महबूब इलाही का मकसद ये था कि अगर आटे के अलावा गैब से कुछ और हासिल हो तो उसे भी देग में डालकर पका लिया जाए, इस तरह गजा की मकदार बढ़ जाती, वरना अगर रोटियाँ पकाई जाए तो एक दो निवालों से ज्यादा खुराक किसी दरवेश के हिस्से में ना आती। आग के शोले भड़कते रहे और पानी उबलता रहा। इसी इस नामे गुदरी पोश फकीर कहीं से घूमता हुआ आया और नारे नाराजगी करने लगा। अगर किसी के पास कुछ है तो वो इसे फकीर के सामने पेश कर दे। आज फकीर बहुत भूखा है, जल्दी करो और उसकी भूख मिटा दो। दरवेश नाराजगी करता हुआ कमालुद्दीन याकूब के पास आया। मौलाना इस वक्त देख के करीब बैठे हुए थे। नजदीक आकर दरवेश ने फिर सदा लगाई, अगर कुछ है तो खाने को दे, देख को बंद क्यों कर रखा है, इसका मुंह खोल दे। हजरत मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने गौर से गुदड़ी पोश की तरफ देखा। दरवेश का लिबास दरीदा भी था और मैला भी। इसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल परेशान। वो अपनी जाहिरी हालत से कोई मजलूम मालूम होता था। मौलाना कमालुद्दीन याकूब जिस मंजिल के मुसाफिर थे वो अक्सर होश की मंजिल थी। वहां किसी इंतशार और जज्ब मस्ती को दखल नहीं था। मौलाना ने गुदरी पोश को एक नजर देखा और उठकर हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत महबूब इलाही साथ कुछ पढ़ रहे थे। मौलाना कमालुद्दीन याकूब को अपने सामने दस्तबस्ता खड़ा देखकर आपने इनसे आने का सबब दरियाफ्त किया। एक मरते दरवेश बहुत भूखा है, मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने अर्ज किया। अंदाजा होता है कि वो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाएगा। मौलाना आपको इसमें क्या इतराज है? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक आरिफाना तबस्सुम के साथ फरमाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक आरिफाना तबस्सुम के साथ फरमाया, इसमें तो इस दरवेश का भी हिस्सा शामिल है। हम तो महज मुंतजिम हैं, मखलूक खुदा को खिलाने के लिए ही बैठे हैं। इन दरवेश से भी कह दो कि अभी खाना पक रहा है, जैसे ही तैयार होगा सबसे पहले इन्हीं की खिदमत में पेश किया जाएगा। पीरू मुर्शीद का हुक्म सुनकर मौलाना कमालुद्दीन याकूब वापस तशरीफ ले गए और अजनबी दरवेश के सामने हजरत महबूब इलाही के अल्फाज दोहरा दिए। गुदड़ी पोश फकीर भूख से बहुत बेकरार था, शदीद हालत इस्तराब में कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अपने शेख से कहकर खाना जिस हालत में मौजूद है भेज दें, बल्कि ज्यादा बेहतर यह है कि वो खुद ही मुझे खाना खिलाएं। ये कहकर वो गुदड़ी पोश फकीर वहां से हटा और कुछ फासले पर जाकर बैठ गया। मौलाना कमालुद्दीन कुछ देर तक हैरत और सकूत के आलम में इस गुदड़ी पोश फकीर को देखते रहे, फिर झिझकते हुए दोबारा पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए और दरवेश की ख्वाहिश मनोअन बयान कर दी। वो लम्हात बड़े अजीब थे। तो मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपनी निशस्त से उठते हुए देखा। हजरत शेख नहायत जज्ब व शौक के आलम में फरमा रहे थे, मेजबान के लिए मेहमान की तवाजा फर्ज है, मगर इससे भी बढ़कर फर्ज ये है कि मेहमान जिस तरह भी खुश हो उसे खुश किया जाए। ये कहकर हजरत महबूब इलाही उस जगह तशरीफ ले गए जहाँ वो गुदरी पोश खाने के इंतजार में बैठा था और सामने ही देख पक रही थी जिसमें शेर भर जौ के आटे के सिवा कोई दूसरी जिन्स जिनसे खुर्दनी शामिल नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखकर वो दरवेश खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। शेख अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज बहुत भूख लगी है इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर चले आए। अब तुम अपने हाथ से इस फकीर को कुछ खिलाओ। हजरत महबूब इलाही ने देख के करीब जाकर देखा, पानी इस तरह उबल रहा था कि अगर इसका एक कतरा भी इंसानी जिस्म पर गिर जाता तो खाल झुलस कर रह जाती। इस सूरत हाल के पेश नजर हजरत शेख ने फरमाया, आपने मुझ फकीर को मेजबानी की सआदत बख्शी, मगर खाना अभी गर्म है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। शेख अब इंतजार नहीं, दरवेश बहुत ज्यादा मुस्तरब नजर आ रहा था। तुम इस आग की बात कर रहे हो, मेरे शुक्म में जो आग लगी है वो इससे भी फजूतर है, बस तुम देख उठाकर मेरे सामने ले आओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फिर कुछ नहीं फरमाया, आसीने जड़ाई और एक मोटे कपड़े से देग के दोनों किनारे पकड़ लिए। पीर मुर्शिद के इस अमल को देखकर मौलाना कमालुद्दीन याकूब आगे बढ़े, मगर हजरत महबूब इलाही ने यह कहकर रोक दिया, मेजबान को मेहमान की मर्जी का लिहाज रखना चाहिए और हमारा मेहमान यही चाहता है कि मैं अपने हाथों से इसकी तवाज़ो करूँ। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया देग उठाकर इस दरवेश के पास ले गए। मौलाना कमालुद्दीन याकूब को गुदरी पोश की अदा सख्त नागवार गुजरी थी कि उसने अपनी जगह से हरकत तक ना की और इस तरह बैठा रहा जैसे खानकाह के लोग उसके खिदमतगार हों। इसके साथ ही मौलाना याकूब ने यह भी महसूस किया कि हजरत महबूब इलाही की पेशानी मुबारक पर नागवारी की शिकन तक नहीं थी, बल्कि आप देग उठाते वक्त बहुत मसरूर नजर आ रहे थे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया देग लेकर इस दरवेश के करीब पहुंचे तो वो भूख की शिद्दत से इस कदर मुस्तरिब हुआ कि इसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हजरत महबूब उलाही उसे मना ही करते रह गए, मगर दरवेश बार बार देग में हाथ डालता और फिर जो जौ के रकीक आटे को मुंह में रख लेता। गुदड़ी पोश ने यह अमल 3 बार दोहराया, फिर इसने देग को उठाकर जमीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मिट्टी का एक बड़ा मटका था जो जमीन पर गिरते ही टूट गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया नहायत सब्र शुक्र से दरवेश की इस इस्तरारी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन याकूब खामोश ना रह सके। मेहमान तुमने ये क्या किया? मौलाना के लहजे से तलखी का रंग नुमाया था। तुम्हें معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے۔ افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا مست کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے اللہ کا یہی حکم تھا۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیکھ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت محبوب الہی کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنشکر نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیکھ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیغ قدموں سے چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بھیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس گدری پوچھ درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء کو سلطان ظاہر و باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ اس اجنبی درویش کے جانے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء پر تسخیر ظاہری کے دروازے کھل گئے۔ لوگ قطار در قطار چلے آتے تھے۔ آنے والوں میں عمرہ، وزراء اور صاحب حیثیت افراد شامل تھے۔ مفلس و تنگ دست لوگوں کے علاوہ جو شخص بھی حضرت محبوب الہی کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتا، کچھ نہ کچھ نظر کے لیے ضرور لاتا اور درخواست کرتا کہ حضرت نظام الدین اولیہ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت محبوب الہی کسی کی دل شکنی نہ کرتے۔ اگر آنے والا متکبر سرمایہ دار ہوتا تو یہ درویش خدا مست انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیتا، ورنہ عام طور پر حضرت نظام الدین اولیہ نظریں قبول فرما لیتے تھے۔ مگر اس طرح کہ ساری چیزیں اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ تسخیر ظاہری کے دروازے کھل جانے کے بعد بھی حضرت محبوب الہی کا وہی حال تھا۔ ایام ممنوع کو چھوڑ کر آپ تمام سال روزہ رکھتے، سحری میں جو کی ایک ٹکیا استعمال فرماتے، اور جب افطار کا وقت آتا تو جو کی دوسری روٹی آپ کی غذا ہوتی۔ خانقاہ میں رہنے والے خدمتگار شکم سیر ہو کر کھاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان علاء الدین خلجی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کے خانقاہ میں ہر محرم کی پانچویں تاریخ سے لے کر دسویں تاریخ تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے عرس مبارک کی تقریبات منعقد ہوتی تھی۔ اس میں شرکت کرنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے زائرین آتے تھے۔ اس طرح طویل و عریض ملک کا شاید ہی ایسا کوئی خطہ ہو جہاں کے لوگ حضرت محبوب الہی کے حلق عقیدت میں شامل نہ ہوں۔ اس زمانے میں سلطان علاء الدین خلجی کا ایک امیر حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیمتی نظر پیش کی۔ خلجی امیر کا خیال تھا کہ حضرت محبوب الہی کسی پس و پیش کے بغیر اس کی نظر قبول فرما لیں گے۔ شاید اس خیال کی وجہ یہ ہو کہ خلجی امیر گوشہ نشین درویشوں کو ضرورت مند سمجھتا تھا۔ تمہاری اس محبت کا شکریہ کہ تم نے درویشوں کا اس قدر خیال رکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، مگر اس فقیر کو اتنی بڑی رقم کی حاجت نہیں ہے۔ خلجی امیر کا چہرہ اتر گیا۔ حضرت محبوب الہی کے طرز عمل نے ایک سرمایہ دار کے ان خیالات کی نفی کر دی تھی کہ درویش ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہر خاص و عام کی پیش کردہ نظر کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ رقم ضرورت مندوں تک پہنچا دو کہ وہ مجھ سے زیادہ تمہاری امداد کے مستحق ہیں۔ خلجی امیر کو خاموش پا کر حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایک سرمایہ دار کا قصرِ پندار آن کی آن میں منہدم ہو گیا۔ خلجی امیر نے درویش کا یہ انداز بے نیازی نہیں دیکھا تھا، دل پر چوٹ لگی تھی، گڑگڑانے لگا، شیخ، مجھے اس طرح تو ناکام و نامراد واپس نہ لوٹائیں۔ بھائی اپنا راستہ لو، کیوں ایک درویش کا وقت برباد کرتے ہو؟ حضرت محبوب الہی نے بیزاری کے ساتھ فرمایا، مجھے اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں۔ دراصل وہ خلجی امیر اپنی دولت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور درویشوں کو ایک بڑی رقم دے کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ حضرت محبوب الہی پر کشف کے ذریعے خلجی امیر کی نیت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے آپ کی زندگی اس کی نظر قبول کرنے سے گریز فرما رہے تھے۔ شیخ، کچھ تو کر فرمائیے، خلجی امیر نے دوبارہ درخواست کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب کیا اور پھر تھیلی میں سے ایک سکہ نکال کر فرمایا، اسے کسی ضرورت مند کو دے دو۔ حضرت محبوب الہی کے اس عمل سے خلجی امیر کے چہرے پر اطمینان کا رنگ ابھر آیا۔ اب جاؤ، हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी अमीर को मुतमईन अंदाज में बैठा देख कर फरमाया, मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, अब कहाँ तक किसी की दिलजोई करूँ, बाकी रकम तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। खिलजी अमीर की शख्सियत पर चढ़ा हुआ मलमा उतर गया और उसकी जबान लड़खड़ा गई, मुझे इस रकम की हाजत नहीं कि मेरे पास बहुत दौलत है। सरमाए के नशे में मुबतला एक मुख्तदर इंसान की बात सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने चंद लम्हों के लिए सुकूत फरमाया, फिर आपके चेहरे मुबारक पर रंगे जलाल उभर आया। बेशक तुम एक दौलतमंद शख्स हो, मगर अल्लाह ने इस दरवेश को भी अपनी नेमतों से महरूम नहीं किया है। इसके बाद आपने खिलजी अमीर को हुक्म दिया कि अपने बाएं तरफ देखे। अमीर ने जैसे ही अपने बाएं जानिब निगाह की, इसकी जबान गुंग हो गई और आंखें खुली की खुली रह गईं। अशरफियों का एक दरिया जारी था जिसे खिलजी अमीर शदीद हैरत और इस्तेजाब के आलम में देख रहा था। इतना कुछ देखकर वो अमीर शर्मिंदा हो गया। मैंने सोने और चांदी के चंद सिक्कों पर बड़ा गुरूर किया और अल्लाह के दरवेश बंदों को मुफलिस और नादार समझा, शेख मुझे माफ़ फरमा दें। खिलजी अमीर के लहजे से इंतहाई आजिजी झलक रही थी, तेरी नज़र में खुलूस और नीयत की सफाई शामिल नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तू दरवेशों की मुफलिसी का तमाशा देखने आया था, मगर याद रख कि अल्लाह अपने सोख्ता जानों को तनहा नहीं छोड़ता। बहरहाल मैंने तुझे माफ़ किया। फिर जब वो खिलजी अमीर नकली सिक्कों की थैली उठाकर इंतहाई शिकस्तगी के आलम में वापस जाने लगा तो हजरत महबूब इलाही ने इसे मुखातिब करके फरमाया, तूने खानकाह के अंदर जो कुछ देखा है किसी से उसका जिक्र न करना। इस वाक़े के बाद वो अमीर जब भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में हाजिर होता तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र ज़रूर करता। वो बड़ी शान वाले हैं, उनकी रूहानी अजमतों का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। वाली हिंदुस्तान बड़े ज़ौक़ो शौक़ से एक दरवेश गोशा नशी का जिक्र सुनता, फिर इस अमीर से पूछता, आखिर तूने शेख निजामुद्दीन औलिया में ऐसी कौन सी बात देखी है जो तूने इनकी मदह सुराई करते नहीं थकता। सुल्तान ज़ीवकार, मैं क्या अर्ज़ करूँ कि मैंने शेख की ज़ात आली सिफात में क्या क्या देखा है। खिलजी अमीर की जबान लड़खड़ाने लगी। वो सुल्तान अलाउद्दीन से कहना चाहता था कि मैंने एक दरवेश बेसरोसामा के कदमों में दौलत का दरिया बहते देखा है, मगर जैसे ही वो इस रास को फाश करने की कोशिश करता इस पर नामालूम सा खौफ तारी हो जाता, और फिर जब वो अपने इरादे से बाज रहता तो उसकी हालत मामूल पर आ जाती। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस अमीर से कई बार पूछा, मगर वो हर मरतबा बस इतना ही कहकर रह गया, शेख में इतनी खूबियाँ हैं कि वो अल्फाज के हिसार में नहीं आ सकती। गायबाना तौर पर वाली हिंदुस्तान भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के हल्के अकीदत की तरफ बढ़ने लगा। हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के इंतहाई चहीते और महबूब मुरीद थे। हजरत अमीर खुसरो को सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के आखिरी ज़माने में उरूज हासिल हुआ। बलबन का सबसे बड़ा बेटा शहजादा खान शहीद हजरत अमीर खुसरो से बहुत मोहब्बत करता था। खुद हजरत अमीर खुसरो भी शहजादा खान शहीद से बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते थे। फिर जब शहजादा सुल्तान मोहम्मद मुल्तान में मुग़लों के हाथों शहीद हो गया तो हजरत अमीर खुसरो गिरफ्तार कर लिए गए और फिर आपको रूसी तुर्की से तान ले जाया गया। कई साल बाद कैद से रिहा हुए और शहजादा खान शहीद का ऐसा असर अंगेज मर्सिया लिखा जिसे सुनकर गयासुद्दीन बलबन जारो कतार रोता था। बलबन खानदान की तबाही के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के अहद हुकूमत में हजरत अमीर खुसरो को अमीर का मनसब हासिल हुआ। आपको खिलत इमारत से नवाजा गया और 1200 तिंका सालाना वजीफा मुकर्रर हुआ। जलालुद्दीन के कत्ल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी हजरत अमीर खुसरो का ओहदा व मनसब बहाल रखा। फिर सुल्तान से इस कदर कुर्बत बढ़ी कि आप मसाहिबीन खास के हलके में शामिल हो गए। फिर जब भी फुर्सत के लम्हात मैसर आए और सुल्तान हजरत अमीर खुसरो को खलबत में तलब करता तो आप अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानियत और जोहद व तकवा का जिक्र छेड़ देते। खिलजी अमीर पहले ही हजरत महबूब इलाही की शान में कसीदे पढ़ चुका था। जब खुसरो भी इंतहाई वालेहाना अंदाज में हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र करते तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसा खुद परस्त हुक्मरान इस दरवेश के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता जो गयासपुर के एक गोशे में बैठकर लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा था। खुसरो ऐसा नजर आता है जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के जिक्र के अलावा तो मैं दुनिया में कोई काम ही नहीं है। सुल्तान मौजम, मेरे शेख ऐसे ही हैं। हजरत महबूब इलाही का नाम लेते ही हजरत अमीर खुसरो के चेहरे मुबारक पर अकीदत व मोहब्बत का समंदर मौजज़न नजर आने लगता था। खुसरो, तुम अपने पीर मुर्शिद से कितनी मोहब्बत करते हो? एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबारी शायर से पूछा। सुल्तान जी हशम, गरीब खुसरो के पास अपने शेख की मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना ही नहीं है। हजरत अमीर खुसरो ने नहायत इल्तो इनकिसार के साथ फरमाया, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी हजरत अमीर खुसरो की इंतहाई अकीदत देखना चाहता था। सुल्तान जी वकार, इस गुलाम के पास एक जाने बेकरार के सिवा कुछ नहीं। हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया, अगर पीरो मुर्शिद हुक्म दे तो नजराना जहाँ कदमों में रख कर अर्ज करूँ कि सैयदी, यह हकीर तोहफा आपके शाया निशान नहीं। हजरत अमीर खुसरो का जोश अकीदत देखकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैरान रह गया, और फिर नादिदा तौर पर वाली हिंदुस्तान भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की जाते गिरामी का असीर होता चला गया। एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हजरत अमीर खुसरो को खलवत शाही में तलब करते हुए कहा, खुसरो, मेरा दिल चाहता है कि मैं शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए गिरां कदर तहाइफ भिजवाऊं। मेरे चारों तरफ थे मुजर के अंबार लगे हुए हैं, अगर इसमें से कुछ दौलत किसी दरवेश के काम नहीं आई तो फिर वसाइल का यह जखीरा बेकार है। अगरचे अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात खुलूस दिल से कही थी, लेकिन हजरत अमीर खुसरो खामोश रहे। खुसरो, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे पीर मुर्शिद की खिदमत में क्या नजर भेजूं? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबारी शायर और मजाहिब खास को खामोश पाकर दोबारा पूछा। हजरत अमीर खुसरो ने कोई जवाब नहीं दिया और बदस्तूर खामोश रहे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैरतदा होकर अपने दरबारी शायर की तरफ देखने लगा, क्या कोई खास बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? सुल्तान ने हजरत अमीर खुसरो के सुकूत का सबब दरियाफ्त करना चाहा। इस बार हजरत अमीर खुसरो के होंठों को जुम्बिश हुई और आपने वाली हिंदुस्तान को हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जिंदगी का एक अहम वाकया सुनाते हुए फरमाया, मेरे शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया नमाज जुम्मा अदा करने के लिए गयासपुर से किलोखड़ी तशरीफ ले जाते हैं। शदीद गर्मी के मौसम में यह तवील फासला इंसानी जिस्म को बहुत गिरां गुजरता है। एक दिन पीरो मुर्शिद के दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे पास कोई घोड़ा होता तो ये एक कोस से ज्यादा का फासला सवारी पर तय कर लेता और गर्म हवाओं के तकलीफ दे झोंकों से किसी हद तक महफूज रहता। हजरत शेख नूरुद्दीन जो एक मुमताज सूफी हैं, इनके किसी खादम के पास एक घोड़ी थी। जिस रोज हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल में यह ख्याल आया था, उसी रोज हजरत शेख नूरुद्दीन के खादिम ने जब ख्वाब में अपने पीर मुर्शिद को देखा, शेख नूरुद्दीन अपने खादिम से फरमा रहे थे, तेरे पास जो घोड़ी है उसे शेख निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में बिला ताखीर पेश कर दे कि वो नमाज जुम्मा के लिए पैदल चलकर सख्त तकलीफ उठाते हैं। सुबह खादिम की आंख खुली तो उसने हुक्म शेख पर अमल करने का इरादा किया, मगर किसी काम की वजह से अपने इरादे को तकमील तक ना पहुंचा सका और शाम होते होते उसके जहन से वो ख्वाब भी महव हो गया। फिर जैसे ही वो दूसरी रात सोया उसने वही ख्वाब देखा। अब की बार हजरत शेख नूरुद्दीन किसी कदर नाराजी से फरमा रहे थे, हुक्म की तामील में देर क्यों हो गई? मुझे मालूम है कि तेरी गफलत की वजह से शेख निजामुद्दीन औलिया को किस कदर तकलीफ हो रही है। खादिम बेचैन होकर उठा, फिर जैसे ही सुबह हुई उसने नमाज फजर अदा की और घोड़ी लेकर हजरत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खादिम से उसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। जवाब में खादिम ने अपना ख्वाब सुनाकर घोड़ी को नजर के तौर पर पेश करना चाहा। खादिम की वजाहत के बाद हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, तुम अपने शेख के हुक्म से हदिया मेरे पास लाए हो, मगर मैं इसे उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर मुझे हुक्म नहीं देंगे। हजरत नूरुद्दीन मलिक का खादिम मायूस होकर चला गया। फिर तीसरी शब उसने ख्वाब में अपने शेख को देखा। हजरत नूरुद्दीन फरमा रहे थे, हजरत बाबा फरीद ने शेख निजामुद्दीन को हुक्म दे दिया है, तो किसी पसोपेश के बगैर नजर पेश कर दे, वो कबूल कर लेंगे। फिर जब अगले सुबह हजरत नूरुद्दीन मलिक का खादिम घोड़ी लेकर हजरत महबूब इलाही के पास पहुंचा तो आपने उसकी नजर कबूल फरमा ली। ये कहकर हजरत अमीर खुसरो खामोश हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन उसने हजरत अमीर खुसरो की सलामती गुफ्तगु का महमूम समझ लिया और वो इस रास तक पहुंच गया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया उसकी नज़र कबूल नहीं फरमाएंगे। वाली हिंदुस्तान ने हजरत अमीर खुसरो के इस इशारे को इख्तदार की अना और शाहाना जिद का मसला नहीं बनाया और किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हजरत अमीर खुसरो से मशवरा किए बगैर हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में एक कीमती नज़र भेजी। हजरत महबूब इलाही के खलीफा अकबर हजरत शेख नसीरुद्दीन चराग दिली के मलफूजात خیر المجالس میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے دربان خاص کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کو 50,000 دینار بطور نظر بھیجے تھے۔ کیسٹ نمبر 37 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب اب آپ کیسٹ نمبر 38 میں سماعت فرمائیے۔